आप सभी के लिए बहुत अभी स्पेशल सेशन होने जा रहा है, जिसमें हमारे विशेष चीफ गेस्ट जो पधार चुके हैं, प्रोफेसर राम शिंदे जी, चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल मुंबई से पधारे हैं। माननीय चेयरमैन जी पधार चुके हैं, इसलिए आप सबसे अनुरोध है आप बैठे रहेंगे और हमारा नेक्स्ट सेशन बस आरंभ होने जा रहा है। और हमारे प्लेनरी सेशन 2 जिसका विषय है डिजिटल डिटॉक्स फॉर होलिस्टिक वेलबींग, समग्र कल्याण के लिए डिजिटल डिटॉक्स, जिसके हमारे आदरणीय मेहमान हैं राजयोगिनी बहन ब्रह्मा कुमारी शकु बहन, राजयोगी भ्राता निकुंज भाई जी, राजयोगी भ्राता दीपक हरके जी और माननीय श्री प्रोफेसर राम शिंदे जी जो चेयरमैन हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के, आज के हमारे प्लेनरी सेशन 2 के कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमार श्रीनिधि भाई जो रेडियो जॉकी और टीवी एंकर हैं, ब्रह्मा कुमारी इस माउंट आबू से पधारे हैं। मैं हैंडओवर करूंगी कि श्रीनिधि भाई आकर के मंच संचालन करें। आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे।
ओम शांति। अभी पिछले 2 दिनों में ओम शांति से तो रूबरू हो ही चुके हैं लगता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सभी मीडिया के भाई बहनों का तहे दिल से पुनः स्वागत है। आज का सत्र एक ऐसा सत्र है जिस विषय पर लगभग हम में से हर एक की नजर गई है और मीडिया के लिए कहा ही जाता है कि हम वो चीजें दिखाने वाले हैं जो लोग नहीं देख पाते, मगर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लोग देख तो रहे हैं मगर उनको सही अर्थों में दिखाई नहीं दे रहा। आप में से कितने लोग रेलवे स्टेशंस पर, ट्रेनों में, एयरपोर्ट्स पे, हवाई जहाजों में, बसों में, घरों में, पार्क्स में, जहां पर भी थोड़ा खाली समय मिल जाए वहां ये देखते हैं कि बच्चे आपस में खेलने के बजाय मोबाइल से खेलते हुए पाए जाते हैं, वो हाथ खड़ा करें? हम ये समझ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हाल फिलहाल में ये चीज बताया गया कि कोविड के बाद से जो डिजिटल स्क्रीन एडिक्शन है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आज जो बच्चों का अटेंशन स्पैन है यानी ध्यान देने के लिए उनकी जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ 8 सेकेंड तक की रह गई है। 8 सेकेंड के पश्चात उनको फिर कुछ नया देखने को चाहिए और इसकी वजह से हम सोच रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक है, मगर अभी पता चल रहा है जब कोविड के बाद बच्चे वापस स्कूल जाने लगे हैं और 2 साल के ऊपर स्कूलिंग में हो गए हैं तो बच्चों के परिणामों में असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं दे रहे हैं। माता पिता ये कह रहे हैं कि ये तो स्कूल की जिम्मेदारी है वो बच्चों को पढ़ाए, और टीचर्स कह रहे हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप उनको सिखाएं कि कैसे ध्यान देना है। तो इस समस्या के लिए समाधान भी हम सबको मिलकर खोजना है और हम मीडिया के साथी लोकतंत्र के 4th स्तंभ के रूप में खड़े हैं। समाज को सही दिशा दिखाना, मार्गदर्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। आज के इस प्लेनरी सेशन में थीम ही है समग्र कल्याण के लिए डिजिटल डिटॉक्स, यानी ये डिजिटल समस्याएं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं अपितु जो हमारे साथी रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी, हमारे वो लोग जो कामकाजी हैं और उनको थोड़ा सा समय मिल जाता है तो वो मोबाइल फोन या किसी स्क्रीन पे लग जाते हैं, उन सभी के लिए एक आवश्यक विषय वस्तु बना है। आज के इस सत्र में मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं डॉक्टर दीपक हरके जी को जो कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया विंग राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन,
अहिल्या नगर से हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं दीपक हरके जी कि आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं साथ ही आज के सत्र के की नोट स्पीच को डिलीवर करने के लिए हमारे विशिष्ट वक्ता ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया विंग राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शक्कू दीदी जी, जो सब जोनल निदेशिका हैं ब्रह्मा कुमारी इस घाटको पर, मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय दीदी जी, आप भी हमारे बीच पधारें और मंच को अलंकृत करें। और आज के इस सत्र के विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम शिंदे जी, जो चेयरपर्सन हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। माननीय महोदय, मैं आपसे भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर पधारें और मंच को शोभायमान करें। इसे पूर्व कि हम मंच पर हमारे सभी अतिथियों को निमंत्रण दें, आज के इस विषय वस्तु पर कुछ राय मशवरा आप सभी से भी चाहते हैं। इस सत्र में जो डिजिटल डिटॉक्स के बारे में हम बातचीत करते हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं? हमें थोड़ा टाइम ऐसा मिले कि भाई मुझे कोई काम नहीं दे, मुझे कोई फिर मैसेज नहीं चेक करना पड़े, ईमेल का रिप्लाई नहीं करना पड़े, ऐसा सुकून दिन में कुछ घड़ियों के लिए तो चाहिए। ऐसा कितने लोगों को महसूस होता है, वो हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। हम में से बहुत सारे लोग आज बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं। हमारे बीच माननीय प्रोफेसर राम शिंदे जी पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल, महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे बीच ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी भी पहुंच चुके हैं, दीपक हरके जी पहुंचे हैं। आदरणीय शक्कू दीदी जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए हम पहले अनुरोध करते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का बैज के द्वारा स्वागत करें और साथ ही पुष्प गुच्छों के द्वारा उनका स्वागत किया जाए। भारत की प्राचीन संस्कृति याद दिलाती है कि हम स्वजनों का और अतिथियों का सहृदय से उसी तरह स्वागत करते हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है प्रोफेसर राम शिंदे जी का, ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी का, साथ ही साथ शांतनु भाई जी स्वागत कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। स्वागत कर रही है राजयोगिनी शक्कू दीदी जी का, और साथ ही हम स्वागत चाहते हैं डॉक्टर दीपक हरके जी का। स्वागत की इस परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी का स्वागत करने वाली बहनों का धन्यवाद चाहूंगा और सभा में उपस्थित आप सभी का भी स्वागत चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं निमंत्रण देना चाहता हूं डॉक्टर दीपक हरके जी को कि आकर वो शब्दों से सभी का स्वागत।
ओम शांति। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में जो 26 से 30 सितंबर शांतिवन में अभी जो अपना चल रहा है, इसके आज के 28 सितंबर के लिए प्लेनरी सेशन में जो टॉपिक है समग्र कल्याण के लिए डिजिटल डिटॉक्स, उसके लिए मंच पर महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष हमारे मित्र प्रोफेसर राम शिंदे जी आए हैं, मैं उनका सबकी तरफ से स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ मंचासीन बीके निकुंज भाई, बीके शकु दीदी और श्रीनिधि भाई जी का भी स्वागत करता हूँ और इस सम्मेलन को लाइव टेलीकास्ट द्वारा देखने वाले और यहाँ हॉल में बैठे हुए सभी पत्रकारों का भी मैं स्वागत करता हूँ। तो आज जो डिजिटल के कारण जो अच्छे फायदे भी हो रहे हैं उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, तो इसके अगर हमको फायदे ही अगर लेने हैं तो हमें ब्रह्मा कुमारी का जो मेडिटेशन का मैजिक है उसको हमें सीखना होगा और हमारे जीवन में उस मैजिक को अपनाना होगा। अगर आप ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन को सीखेंगे, आपके परिवार को भी सिखाएंगे, तो आपका घर एक स्वर्ग बन जाएगा और आप दुनिया के लिए उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि लोग आपके पास आएंगे, पूछेंगे कि क्या है आपके खुशहाल परिवार का रहस्य। तो मैं सबको ये आग्रह करता हूँ, आप यहाँ आए हैं तो ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सीख के जाइए और जहाँ भी आप रहते हो वहाँ जाके इस मैजिक को सबके सब जगह फैलाते जाइए। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक हरके जी का। दीपक हरके जी सरल शब्दों में आप सबका स्वागत कर रहे हैं और मंच पर हमारे सभी अतिथियों का उन्होंने स्वागत किया, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। अब मैं आज के इस सत्र की जो विषय वस्तु है उस पर प्रकाश देने के लिए आज के इस सत्र के कीनोट स्पीकर ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगा कि 13 वर्ष की अल्प आयु में वो ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आए और पिछले 35 वर्षों से भी अधिक समय से उन्होंने राजयोग की साधना और तपस्या से अपने जीवन को निखारा है और समाज में अनेकानेक लोगों को प्रेरणा देकर उनके जीवन में वापस खुशहाली लौटाने के निमित्त बने हैं। एक जाने माने पत्रकार और स्तंभकार होने के नाते उन्होंने विविध न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में 9,000 से अधिक कॉलम्स और आर्टिकल्स लिखे हैं। हिंदी, इंग्लिश ही नहीं, मराठी, गुजराती सहित अनेक अनेक भाषाओं में उन्होंने लेख लिखे हैं। साथ ही भारत के प्रथम आध्यात्मिक टीवी चैनल के रूप में संस्कार चैनल जब शुरू हुआ उसे शुरू करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और क्योंकि आजकल जमाना सोशल मीडिया का है और हम सभी देखते हैं कि हम सभी पॉडकास्ट बड़े चाव से देखते और सुनते हैं, तो उन्होंने पॉडकास्ट और वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से अनेक अनेक युवाओं को प्रेरित किया है और 2,000 से अधिक पीस पॉडकास्ट के एपिसोड्स और पॉडकास्ट रील्स के द्वारा देश विदेश में समग्र विषयों पर अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए आध्यात्म की भूमिका को बताया है। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं राजयोगी ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी को, जो आज के इस विषय पर कि समग्र कल्याण के लिए डिजिटल डिटॉक्स पर अपने विचार व्यक्त करें। ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी।
ओम शांति। अरे बहुत बड़े आपके लिए बुलाए हमने चीफ गेस्ट, जरा हाथ ऊंचा करके सब बोलिए ओम शांति। तो फोन नहीं दिखा किसी के हाथ में मुझे, तो अभी भाली में कुछ समय पूर्व वो पर्युषण का एक कार्यक्रम होता है जैन धर्म का, उसमें मुझे निमंत्रित किया गया था। उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा, भाई सुबह उठ करके सभी क्या देखते हैं? मेरे को ऐसा लगा सब बोलेंगे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, सब ने बोला फोन देखते। भाई इधर ऐसा है कोई, क्या सुबह उठ के क्या देखते हो? कौन फोन देखते? हाथ खड़ा करो सुबह उठ के। सच सच बोलो, सच्ची सच्ची बोलो, सुबह उठते ही फोन कौन देखता है? तो इसीलिए हम लोगों ने इस सब्जेक्ट रखा है मैंने इसके ऊपर लिखा भी बहुत है पेपरों में, ये जो डिजिटल डिटॉक्स है। अभी हम हवाई जहाज में आ रहे थे मुंबई से, तो हवाई जहाज उड़ने से पहले वो एयरोस्ट्रेस सबको बोलती है ना, अपने सब डिजिटल उपकरण बंद कीजिए। तो एक बुजुर्ग चाचा थे, मैं समझता हूँ 75 के करीब उम्र होगी, वो उनके चालू ही था, कान में मशीन था, वो जाके बोली, सर आप ये अपना बंद करिए फोन। तो देख के बोले, भाई ये फोन तो मैं बंद कर दूं, पर खुद को कैसे बंद करूं? तो मैं उनका फिर वो करके बंद कर दिया। तो वो काका बोलने लगे, भाई ये थोड़ा टाइम भी बंद हो जाता है, मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है, 75 साल के हैं, तो इसीलिए हाथ में रहता है तो थोड़ा। तो आज हम लोगों के लिए विज्ञान ने जो साधन बनाया, शुरू शुरू में फोन का आविष्कार हुआ इसीलिए, उसको क्या कहते हैं भाई, दूरध्वनि उपकरण। किसी को आपको कुछ मैसेज देना है तो फिर मोबाइल बन गए, तो तुरंत तुरंत सब मैसेज चला जाता है, वीडियो कॉल होता है। परंतु ये सारे इतने वर्षों के यूजेज में हम ये चीज भूल गए कि हम मोबाइल यूज करना है। पर आज क्या हो रहा है बोलो, क्या हो रहा है बोलो, मोबाइल हमको यूज कर रहा है। तो देखो तो आज छोटे बच्चे जो है, इनको मणके का तकलीफ हो गया है, देख रहे हो ना, दो दो तीन तीन साल के बच्चे को चश्मा लग गया है, देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चे को चश्मा लग गया, तो सारा दिन क्या वो गेम खेलते रहते, कुछ टाइम जैसे मिला गेम खेलते रहते। तो हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि कंटिन्यूस स्क्रीन को देखते 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 हमारी जो बुद्धि है वो एक प्रकार से वीक होती जा रही है, हमारा शरीर वीक होता जा रहा है, हमारा बोलना वो वीक होता जा रहा है। ये सबका मिश्रण जो है ना, वो अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ था, उसको नाम इन्होंने दिया डिजिटल ओवरलोड। जैसे बिजली का ओवरलोड होता तो क्या होता है, क्या होता है, वो ट्रिप हो जाता है ना, फिर आप वापस स्विच चालू करना पड़ता है तो वापस लाइट आ जाती है। ये जो डिजिटल ओवरलोड है, उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे संबंधों में दूरियां आ रही है, हमारी तबीयत जो है सारा दिन अधिकतर खराब ही रहती है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ऐसा हो रहा है, मूड अच्छा नहीं रहता है। किसी को मैसेज भेजा, उसने देखो उसका वो दो राइट हो गया, ब्लू नहीं हुआ, कभी होगा ब्लू नहीं हुआ, कभी मेरा दिया नहीं, जवाब दिया नहीं, मेरा फोन उठाया नहीं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ जाता है, झगड़े होने लगते हैं, चिल्लम चिल्ली हो जाती है। किस वजह से? एक फोन की वजह से। तो आप लोगों को कभी किसी को घर में ऐसा अनुभव हुआ है, जो बच्चों ने कभी आपको कहा है, मम्मी पापा आप हमको टाइम नहीं देते, सारा टाइम फोन में ही होता है, ऐसा बोला है किसी को? बोलते होंगे सारा टाइम फोन में लगे रहते, भाई कभी हमको तो टाइम दियो। तो इसीलिए सब्जेक्ट रखा है ये डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब क्या? ये जो टॉक्सिन हमारा शरीर में जमा हो जाते, नेचुरोपैथी जानते हो ना, हाँ या ना? अरे आप बोलेंगे नहीं मुझे समझेगा नहीं, आप सोए हो के जाग रहे हो, हाँ या ना? हाँ। तो नेचुरोपैथी में जाते पहला दिन दाखिल होते क्या करते, सारा अनाज बंद, केवल लिक्विड पे रखते हैं। क्यों भाई? तुम्हारा सारा शरीर का जहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, इसका सिंपल आप लोगों को आज चार स्टेप है वो बता देते हैं। जब कभी भी यहां से जाओ या यहां भी, इसको आज से जरूर आरंभ करो, तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। तो डिजिटल डिटॉक्स मतलब ये नहीं कि केवल मोबाइल को बंद करके रख देना है, सिर्फ ये नहीं है, परंतु उसके साथ साथ वो डॉक्टर भी बोलते हैं ना, दिन में 3 बार ये गोली लो, ये गोली लो बोलते हैं ना, बोलो आया ना? तो ऐसा आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सारा दिन में 15 मिनट फोन बंद कर सकते हो, आया ना? जो समझते हाथ खड़ा करो। अब 24 घंटे में से 15 मिनट, देखिए अध्यक्ष जी सब बोल रहे कर सकते हैं, 15 मिनट खाली फोन बंद करना और नहीं। उसके अलावा हर दो घंटे पे 3 मिनट फोन से दूर रह सकते हैं, आया ना, हर दो घंटे में 3 मिनट, उसके अलावा खाना खाते टाइम फोन नहीं रखो, कर सकते ट्राई करो, खाना खाते टाइम नहीं, देखो ये नुकसान है बहुत इसमें, इस डिटेल में नहीं जाता हूं, उतना करो। और एक चीज कि घर में एक समय ऐसा निश्चित करो, भले रात को सोने से पहले आधा घंटा, जो सारा फैमिली एक साथ मिलकर के, तो पहले कैसा था, अंताक्षरी खेलते थे, कोई अंताक्षरी खेलता है, कोई अभी हाथ खड़ा करो, कोई घर में खेलते है क्या, वो सांप सीढ़ी लूडो को खेलता है, तो ये फोन के अलावा कुछ रात को सोने से पहले आधा घंटा हो सकता है, हाथ खड़ा करो, कोशिश करो परिवार के साथ, या कभी बाहर नीचे गए किधर मकान में बैठे, तो ये 3-4 स्टेप है, इतना जरूर करो। देखिए मित्रों, हम सभी मीडिया जगत से, हमारा काम केवल खबरें देना ही नहीं, परंतु स्टेबल माइंड रख करके ऐसा खबर देना जो लोगों के अंदर भी सकारात्मकता है। तो इसीलिए आज पक्का करके जाओ कि स्क्रीन के बाहर भी एक सुंदर दुनिया है। ये सारा दिन आप पकड़ के बैठते हो ना, इसका अंदर जो भी, इसका जो रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, आपको समझ नहीं रहा है कि ये टावर के साथ कनेक्टेड है, ये कहां ना कहां आपको कुछ समय के बाद असर दिखेगी जरूर, कान पे, दिमाग में। तो थोड़ा सा अपना तबियत के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, ये डिटॉक्स डाइट जिसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन डाइट, इसका आज से शुरुआत करो। करेंगे, दो हाथ खड़ा करके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सदैव स्वस्थ रहो, फोन का इस्तेमाल करिए परंतु काम के लिए करिए, और खुश रहो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी का, जिन्होंने सरल और स्पष्ट शब्दों में यह बताया कि क्या करना है। समस्या हमारे सामने है और समाधान भी हमारे सामने है, या इस परिपेक्ष में ये कहूंगा कि समस्या हमारे हाथ में है और समाधान भी हमारे ही हाथ में है। अगर हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? अगर हम बदलाव चाहते हैं तो बदलाव स्वयं लाना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्द याद आते हैं, उन्होंने कहा था कि द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड यू शुड बिकम, यानी वो बदलाव जो मैं चाहता हूं वो मुझे स्वयं बनना होगा। आज हमारे साथ एक ऐसे ही जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने बदलाव की एक नई सोच युवाओं के बीच में लाया, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से उठकर आज किसानों के लिए एक नया बदलाव, किसानों के जीवन को फिर से खुशहाल बनाने की कोशिश करते हुए आज एक ऐसे पद तक पहुंचे हैं जहां पर वो मार्गदर्शन के साथ साथ, जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ समाज के लिए एक प्रेरणा है। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर राम शिंदे जी का, जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र विधान परिषद के, चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। जनसेवा के क्षेत्र में एक लंबा जुड़ाव रहा है। एक छोटे से गांव से आते हुए लोगों तक पहुंच पाना, लोगों को एकजुट करना और समाज में कुछ नए बदलाव के लिए साथ में लेकर लोगों को चलना, उनके जीवन का एक हिस्सा रहा है। महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष बनने से पूर्व महाराष्ट्र सरकार में जल संरक्षण विभाग के मंत्री के रूप में भी वो सेवाएं देते रहे हैं। उनके लंबे जनसेवा के पूरे अनुभवों को साझा न करते हुए मैं बिना विलंब के उन्हें निमंत्रण देना चाहता हूं कि आज के उपलक्ष्य पर वो अपना अतिथि भाषण हमारे सामने प्रस्तुत करें और हमारे सभी मीडिया के साथियों को उद्बोधित करें। प्रोफेसर राम शिंदे जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत है।
आज इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में मंच पर विराजमान आदरणीय ब्रदर बी के निकुंज नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग आरईआरएफ मुंबई सिस्टर बी के शाकू सब जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपक हरके और ब्रदर बी के श्रीनिधि और उपस्थित गणमान्य प्रतिनिधि डेलीगेट्स एंड पत्रकार मित्र आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम माउंट आबू की पवित्र धरती पर आयोजित राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गर्वित और कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। यह स्थान केवल भौगोलिक ऊंचाई का प्रतीक नहीं है बल्कि आध्यात्म को ऊंचाई देने वाला केंद्र है। रोल ऑफ मीडिया फॉर प्रमोटिंग पीस यूनिटी एंड ट्रस्ट इन सोसाइटी जैसा महान विषय चुनने और उस पर चर्चा करने का यह प्रयास समाज को नई दिशा देने में ऐतिहासिक साबित होगा। डिजिटल डिटॉक्स फॉर होलिस्टिक वेल बीइंग ये आज के तंत्र की मांग है और हमें इसे सोच समझकर गहराई से चिंतन करते हुए पूरा करना ही पड़ेगा। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मोबाइल फोन इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जीवन को तेज तो बनाया है लेकिन कहीं न कहीं इस तेजी ने ही जीवन का संतुलन बिगाड़ दिया है। सुविधा धीरे धीरे अशक्ति और फिर व्यसन में परिवर्तित हो रही है। रिसर्च बताती है कि भारत के लगभग 25% युवा मोबाइल व्यसन में जूझ रहे हैं। स्मार्टफोन से जुड़ाव हमें दुनिया से जोड़ता है लेकिन कभी कभी हमें स्वयं से तोड़ देता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि साधन बढ़ते चले जाए पर यदि संयम न हो तो सुख की जगह दुख ही मिलता है। यह वाक्य हमें स्पष्ट करता है कि केवल तकनीकी बढ़ाने से प्रगति नहीं होती बल्कि संयम संतुलन और आत्मनियंत्रण ही असली विकास का आधार है। तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मानवता की सेवा के लिए कार्य करे और डिजिटल डिटॉक्स हमें यह विवेक प्रदान करता है। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ है जागरूक होकर कुछ समय के लिए तकनीकी उपकरणों से दूर बनना। यह दूरी न केवल तनाव घटाती है बल्कि आत्मिक शक्ति को ही बढ़ाती है। जब मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय फोन से दूर रहकर खुद को प्रकृति परिवार और आत्मचिंतन से जोड़ता है तब उसकी मानसिक स्थिरता बढ़ती है, नींद बेहतर होती है और जीवन में संतोष का स्वभाव आता है। भगवान बुद्ध ने कहा था मनुष्य अपने विचारों से समर्पित होता है, जो सोचता है वही बनता है। अगर हमारा मन निरंतर उपकरणों और सूचनाओं के बोझ से भरा रहेगा तो शांति और एकाग्रता संभव नहीं। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स का सीधा उद्देश्य है मन को हल्का करना और सकारात्मक विचारों से भरना। बहुत से वैज्ञानिक अध्यक्षों ने यह स्वीकार किया है कि अध्ययनों ने स्वीकार किया है कि डिजिटल डिटॉक्स आधुनिक युगों की अनिवार्यता है। अमेरिकी की एक रिपोर्ट के अनुसार 86% लोग मानते हैं कि काम के अतिरिक्त समय में मोबाइल या इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है। गुजरात, अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों में किए गए शोध भी बताते हैं कि छोटे छोटे डिजिटल ब्रेक दिल और दिमाग के लिए औषधि का काम करते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए सारी दुनिया जितना सरल हो जाता है। यह वचन हमेशा दर्शाता है कि आत्मसंयम की सच्ची शक्ति है। डिजिटल डिटॉक्स व्यक्ति को अपने मन का स्वामी बनाता है, गुलाम नहीं। डिजिटल डिटॉक्स केवल बाहरी उपकरणों से दूरी नहीं बल्कि अंदर की शांति को जगाने का साधन है। ब्रह्म कुमारी संस्था ने राजयोग के माध्यम से मनुष्य को स्वयं से जुड़ने का मार्ग दिखाया है। जब हम ईश्वर स्मरण, ध्यान व आत्मचिंतन करते हैं तब हमें सब समझ आती है कि असली शक्ति बाहर नहीं भीतर छिपी है। मीडिया के सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि डिजिटल मिनिमलिज्म यानी तकनीकी का संयमित उपयोग और स्पिरिचुअल रियलिज्म यानी अध्यात्म का अनुशासन दोनों को जीवन में समाहित करें। मीडिया केवल सूचनाएं देने का साधन नहीं है, ये समाज की दिशा तय करने वाली शक्ति है। आज जब तक तकनीक और सूचना हर हाथ में है तब मीडिया का यह सुनिश्चित करना होगा कि संदेश केवल तेजी से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पहुंचे। यदि मीडिया डिजिटल डिटॉक्स जैसे विषयों को समाज में प्रसारित करेगा तो यह मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध और सामाजिक विश्वास को सुदृढ़ करेगा। अमेरिका लेखिका एनी लेमोंट का कथन है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल वर्क अगेन इफ यू अप्लंग इट फॉर अ फ्यू मिनट्स इंक्लूडिंग यू। यह कथन हंसी और गहराई दोनों उत्पन्न करता है। मशीन की तरह ही इंसान का मन और शरीर भी तब ठीक से कार्य करता है जब हम उसे समय समय पर अनप्लंग करते हैं। यही है डिजिटल डिटॉक्स। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में डिटॉक्स आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी तकनीक में डूबे हुए हैं। परिवार के साथ भोजन करते समय भी मोबाइल पर नजर होती है, यह प्रवृत्ति हमें रिश्तों से दूर कर रही है। डिजिटल डिटॉक्स यहां से शुरू हो सकता है। भोजन के समय उपकरण बंद करें, परिवार या मित्रों के साथ खुलकर संवाद करें, निसर्ग से जुड़े, आधा घंटा गैजेट फ्री टाइम निकाले। जिस प्रकार शरीर को उपवास से शक्ति मिलती है उसी प्रकार मन को डिजिटल उपवास से शांति मिलती है। विश्व के कई देशों में डिजिटल डिटॉक्स रिचार्ज, तकनीकी मुक्त छुट्टियों और सोशल मीडिया से ब्रेक जैसी पहले हो रही है। भारत में भी यह परंपरा नई नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले ही मौन, ध्यान और आत्मसंयम की साधना द्वारा यह डिटॉक्स विधि अपनाई थी। हमें केवल आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में उसी परंपराओं को पुनः जागरूक करना है। कोरोना काल के बाद से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कार्य संस्कृति ने कर्मचारियों को तकनीकी पर अधिक निर्भर कर दिया है। इसका परिणाम है टेक्नो स्ट्रेस, नींद की कमी और उत्पादकता में गिरावट। कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं अब कर्मचारियों हेतु डिजिटल वेल बीइंग पॉलिसी लागू कर रही है। यह संकेत है कि डिजिटल डिटॉक्स केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट और प्रशासनिक जगत की भी आवश्यकता है। डिजिटल डिटॉक्स की संदेश हमें यह याद दिलाता है कि तकनीक हमारे लिए हम तकनीक के लिए नहीं, जब हम संयम से इसका उपयोग करेंगे तो यह विकास का साधन बनेगी, और जब हम अनुशासन से अपने भीतर झोंकेंगे तो यह शांति और संतुलन का स्रोत बनेगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन से उत्पन्न विचार पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए नई दिशा देंगे। समापन में एक बार पुनः ब्रह्म कुमारी संस्था, आयोजकों और मीडिया विंग का हार्दिक अभिनंदन करता और आप सभी मिलकर भारत को पीस, यूनिटी एंड ट्रस्ट के मार्ग पर आगे ले जाएंगे और डिजिटल डिटॉक्स की यह अनिवार्य संस्कृति निश्चित ही आत्मिक और सामाजिक कल्याण का माध्यम बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
माननीय प्रोफेसर राम शिंदे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रेरणाओं से हमको भरपूर किया। ये भी चीज पता चलती है कि जो सरकारी पद पर सरकार में मार्गदर्शन का काम करने के लिए जो व्यक्ति निमित्त है, उनके मन में भी ये विचार हैं कि हम आज के इस ज्वलंत समस्या को देखें और इसके समाधान को जल्द से जल्द लागू करना शुरू करें। आदरणीय शक्कू दीदी जी हमारे बीच में हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आकर हम सबको अपने विचारों से प्रेरित करें। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शक्कू दीदी जी, वर्तमान समय में आप घाटकोपर ब्रह्मा कुमारी सब जोन की निदेशिका हैं और पिछले 50 वर्षों से आपने ईश्वरीय सेवाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर अनेक लोगों को परिवर्तित करने की भूमिका निभाई है। मीडिया के जगत में भी YouTube में तत्वबोध नामक प्रेरणादायी कहानियों से आपने अब तक 650 से अधिक वीडियोस प्रेरणाओं के लिए छोटी कहानियों के रूप में प्रस्तुत कर लोगों को प्रेरणाएं दी हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचार रखें। आदरणीय राजयोगिनी शक्कू दीदी जी,
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ दैवी भ्राता राम शिंदे जी, राजयोगी निकुंज भाई जी, डॉक्टर दीपक हरके जी और सभा में उपस्थित आप सभी मीडिया कर्मी भाई बहने, बहुत अच्छा आज का विषय जो हमें कम समय में पूर्ण करना है। आप विषय सुन चुके हो कि समग्र कल्याण के लिए डिजिटल डिटॉक्स तो कितना जरूरी है, क्योंकि आज का विषय समय प्रमाण आवश्यक भी है और साथ साथ रमणीक भी है। क्योंकि बताया आपको कि इसमें फायदे भी हैं, तो फिर अगर ज्यादा समय में हम यूज करते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। कैसे हम उसका डाइट करें और किन किन बातों का ध्यान रखें वह आप वक्ताओं से सुन चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। परंतु उसको हम कैसे संतुलन में रखें, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी बनी है वो हमारे फायदे के लिए बनी है, हमारी सुविधाओं के लिए बनी है। तो ऐसा तो नहीं कि हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल जरूर करेंगे, परंतु साथ साथ बैलेंस में हम कैसे चलें कि हम सबके साथ मिलके भी चल सकें, हमारी तबीयत भी अच्छी रहे, हमारे मन की स्थिति भी अच्छी रहे, संतुलन कैसे बनाए रखें। तो संतुलन बनाए रखने की विधि एक ही है, सारे विश्व के अंदर भी अगर आप ढूंढेंगे तो रास्ता इधर ही मिलेगा आपको, और वो है राजयोगा मेडिटेशन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रत्येक शाखा के अंदर ये राजयोग सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल इसका अनुभव कराया जाता है। क्योंकि जब भी हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है, हमारे मन की स्थिति डामाडोल होती है, स्ट्रेस आता है, तभी हमें मदद करने वाला, शक्ति देने वाला हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता परमात्मा ही है, जो सर्वशक्तिमान है। जब हम उनसे योग लगाते हैं, मन से उनसे शक्ति लेते हैं, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हमें वो संतुलन की जो शक्ति है वो उनसे प्राप्त होती है। तो वह प्राप्त करने के बाद हमारे सामने भले कितनी भी नेगेटिव बातें आवे, नकारात्मकता की बातें आवे, लेकिन हमारे अंदर वो कला आ जाती है कि हम उसको पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। और जब ये कला आती है, शिंदे साहब जी हमारी सभा से हमसे छुट्टी लेके जा रहे हैं, उनको सौगात दे रहे हैं हमारे जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे। शांतनु भाई, बाबा के घर से, पिता के घर से, परमात्मा के घर से उनको गिफ्ट दे रहे हैं और बार बार आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़ा समय निकाल करके हम सबके बीच पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता रही थी कि पॉजिटिव अगर हमारी ये एक कला हमारे अंदर आ जाती है कि हम नेगेटिव आता है तो भी उसको पॉजिटिव में कैसे परिवर्तन करें, ये कला अगर आपको आ गई तो आप कभी भी जो है मन को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर तो आजकल नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। जैसे आप देखेंगे पिता परमात्मा जो हमें राजयोग सिखा रहे हैं, तो मन वचन कर्म से हम पॉजिटिव बन जाते हैं। सबसे पहले है हमारा मन, क्योंकि मन के अंदर ही संकल्प आते, विचार आते हैं। तो मन में हम कैसे पॉजिटिव विचार करें, चाहे कैसी भी व्यक्ति हो, कैसी भी आत्मा हो, प्रिय हो अप्रिय हो, पर हर आत्मा के प्रति हम शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें, उसके लिए अच्छा सोचें। ये यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे हर आत्मा के प्रति स्नेह जागृत होता है। इसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे बोल है, कहते हैं ना तलवार जो है जोरदार होती है तो वो लग जाती है, तो शब्दों की तलवार जो है अगर इस प्रकार की तेज होती है तो शब्दों की तलवार तोड़ती भी है नाते और जोड़ती भी है। तो कैसे हम मधुर वाणी के द्वारा सभी को अपना बना सकते हैं, उनके दिलों पे राज कर सकते हैं। शब्द वही होते हैं पर उनको पॉजिटिव में कैसे उठाएं। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ कि देखो जैसे ट्रक होती है, ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिखा होता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और एक ट्रक के पीछे लिखा होता है देखो मगर प्यार से। अगर आप दोनों का अर्थ निकालेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन जब भी हम बोलेंगे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो चेहरे के ऊपर जो है ना हमारे थोड़े गुस्से के भाव आ जाते हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे देखो मगर प्यार से तो चेहरे के ऊपर वो स्नेह के भाव आ जाते हैं। तो शब्द हम कैसे मुंह से निकालें, तोल तोल कर बोला जाता है, तो वो शब्द भी हमारे पॉजिटिव हो, जो किसी को धार जाकर के लगे नहीं, घाव न लगे। कर्म के अंदर भी हम सबके कैसे सहयोगी बने, मदद करें, सहयोग दे करके, सुख दे करके, शांति दे करके, खुशी दे करके, अपने पास दुआओं के खजाने जमा करें। तो ये सभी जो शक्तियां हैं ना वो हमें राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये जो आपने सभी डिटेल बातें वक्ताओं के द्वारा सुनी है कि डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है, तो अच्छा तो सबको लगता है सुन करके कि होना चाहिए, पर कैसे होवे, जब परिस्थिति आती है तो हम उसके वश हो जाते हैं। तो इसके लिए वो विल पावर, कंट्रोलिंग पावर, ये सारी शक्तियाँ ये राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। मेरे ख्याल से दो दिन से आप शायद इसके विषय में भी शिविर में, क्लासेस में सुनते होंगे बहनों के द्वारा कि कैसे हम आत्मा परम पिता परमात्मा को मन से बुद्धि से याद करें, स्वयं को पहचाने, अपने पिता को पहचाने और उनके साथ हम किस प्रकार का योग का अभ्यास करें जो हमारे अंदर सारे दैवी गुणों की धारणा हो। मेरे ख्याल से आपको शायद सुबह सुबह क्लासेस भी कराए जा रहे हैं। सुन रहे हो सभी क्लासेस आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में। तो ये जो विधियां हैं, ये विधियां हमको ऑटोमेटिक जो है ना, ये अवगुणों से डिटॉक्स करती है। जैसे शरीर के अंदर बताया कि ऐसे जहरीले तत्व आते हैं तो हमको निकालना जरूरी होता है, हेल्थ पर असर होता है। जंक फूड आदि खाते हैं तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जब नेगेटिव का हमारे पास संग रहता है तो उसका भी हमको बहुत नुकसान हो जाता है। तो हम आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करें, वो इस विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक शाखा के अंदर सिखाया जाता है। तो मैं खाली इतना ही आपको कहना चाहूंगी कि यहाँ आप दो दिन तीन दिन के लिए आए, यहाँ तो आप ज्यादा समय नहीं दे सकते हो, लेकिन प्रत्येक शाखा जो भी आपके समीप शहर के अंदर है वहाँ आप थोड़ा समय निकाल करके यहाँ से जाने के बाद परिवार सहित आप अवश्य जाएं और इन बातों को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ लाखों परिवार है, हर परिवार में परिस्थितियां आती है, स्ट्रेस आते हैं, टेंशन आते हैं, क्योंकि दुनिया ही समस्याओं की है। लेकिन कैसे वो घर गृहस्थ में रह कर के भी घर गृहस्थ को स्वर्ग बना के चल रहे हैं, तो आप जब वो देखेंगे तो आप स्वयं भी उसके अंदर अपने परिवार को ऐसा सुखमय बना सकेंगे। तो यहाँ से वो प्रेरणा लेकर के जाएं और यहाँ से दृढ़ संकल्प करके जाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी मीडिया फील्ड के अंदर हो। आप अगर ऐसे बनेंगे तो आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा मूर्त बन सकते हो। तो जो कल हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, दूध घी की नदियां बहती थी, देवी देवताओं के राज्य था, ऐसा भारत परमपिता परमात्मा फिर से बना रहे हैं। तो हम सब मिलकर के परमात्मा के कार्य में जब ऐसा सहयोगी बनेंगे तो भारत जो कल हमारा था स्वर्ग और आज ऐसा बन चुका है, उसको हम फिर से शीघ्र से शीघ्र कल के जैसा स्वर्ग बना सकेंगे, सोने की चिड़िया बना सकेंगे, और वो तो निश्चित होना ही है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजयोगिनी शक्कु दीदी जी का। आज के इस सत्र में हमने अनेक प्रेरणादायी विचार सुने हैं और ये सिर्फ सुन के जाने वाली बात नहीं है, सुनकर समाकर साथ ले जाने वाली चीजें हैं। आपका पहला टेस्ट पेपर आपके दोपहर के लंच पे शुरू होगा। लंच के टाइम पे कितने लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये परख आपको खुद करनी है। खुद ही खुद के जज बने, आप स्वयं कंट्रोल को अपने हाथ में लें और डिजिटल डिटॉक्स की इस नई सीख को लेकर समाज में और अपने समाज के साथ साथ परिवार में भी एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे, ऐसी शुभ आशाएं हैं। आज शाम का सत्र 4 बजे इसी सभागृह में होगा। एथिकल AI एंड सोशल मीडिया फॉर एन आइडियल फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म, इस विषय पर यह सत्र होगा। कुछ और अनाउंसमेंट्स भी होंगे। हम 1 मिनट प्रभु स्मृति के साथ इस सत्र का समापन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता श्रीनिधि भाई जी का, उनका भी सम्मान हो रहा है।